ஓம் சாந்தி. பாபா நே இசை ஜன்மே ஹம் சபி கோ பஹோத் அச்சா சங்கல்ப் தியா தா, கௌன்சா? சதா சதா குஷ் ரஹ்னே கா. குஷி சன்சார் கி பஹோத் படி ப்ராப்தி ஹை. கிசி கே பாஸ் தன் பி பஹோத் ஹோ, பரிவார் பி அச்சா ஹோ, லேகின் குஷி நா ஹோ, சப் பேகார் லக்தா ஹை. குஷ் ரஹ்னே வாலே பிமார் பி கம் ஹோதே ஹை, பதா ஹை நா? ஔர் அகர் பிமாரி ஆ பி ஜாயே தோ வோ உன்கி குஷி கோ தேக் கர் பாக் ஜாதி ஹை. தோ ஆஜ் ஹம் சார் குணோ பர் சர்ச்சா கரேங்கே, ஜிஸ்ஸே ஜீவன் சுகி ஹோ ஜாதா ஹை. பஹலா ஹை, அப் பதாயேங்கே, உன்மே ஸே சார் சுனேங்கே ஹம், சந்துஷ்டா, பஹனோ கோ பதானே தோ. தூஸ்ரா बोलो, सोचने क्या बात? चलो भाई बताओ, सहनशीलता. फिर माताओं का नंबर नहीं आता, भाई बताओ. चलो भाई, सरलता. चौथा मंजुनाथ तुम बता दो. चौथा यही मैंने सोचे थे तीन, और चौथा भी एक है. अमित मेजर साहब, नष्टो मोह तो बड़ी चीज है. नष्टो मोह पे चर्चा करने से माताएं उदास हो जाती हैं. मैं देखता हूं कि ये बड़ा भारी काम है, उसे हम छोड़ देते हैं. समय पर निरहंकारिता, ठीक है ना? बहुत अच्छा गुण है. पहले हम लेंगे सरलता. सरलता का सीधा सा अर्थ है बहुत हल्केपन से जीवन जीना, सहज भाव से जीवन जीना. सभी विचार करेंगे, आज मनुष्य अपना जीवन सहज भाव से नहीं जी रहे हैं. मेरे पास बहुत लोग जो आते हैं, मैं देखता हूं उनमें जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, नौकरियों पर हैं, जो ज्यादा बुद्धिमान हैं, डॉक्टर साहब, ज्यादा ही दुखी रहते हैं. साधारण लोग सहज पार करते हैं. हमें अपनी बुद्धि को ऐसा बनाना है. बुद्धिमान तो सभी हैं, कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग जीवन को महान बनाने में करते हैं, और कोई उलझाने में. कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग बाबा से सब कुछ लेने में करते हैं, और कोई संगम पर इधर उधर देखने में, कौन क्या कर रहा है. बहुत बुद्धिमान है ना, सब देख लेते हैं. ज्ञान सरोवर में एक दिन के लिए आए, सब समाचार मालूम करके गए, कहां क्या हो रहा है. वहीं से फोन आएगा तो यहां वालों को पता लगेगा कि ज्ञान सरोवर में ऐसा भी हो रहा है. बुद्धि सबके पास है. कौन अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके जीवन को खुशियों से भर रहा है, ये अपने ऊपर है. सरलता, पांच बातें याद रखेंगे. जो स्वयं सरल चित्त होंगे उनका, नहीं दूसरी चीज सोचो, जो स्वयं सरल हैं उनके संस्कार भी सरल हो जाएंगे. जो स्वयं सरल हैं उनकी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी. ये बाबा के महावाक्य हैं, 71 की मुरली के. जो स्वयं सरल हैं उनकी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी. और दो और बहुत अच्छी बात है, जो सरल चित्त हैं उनके संबंध संपर्क भी सरल रहते हैं, जटिलता नहीं उनमें, कटुता नहीं. और पांचवी बात, जो स्वयं सरल हैं उनका योग भी सरल हो जाता है. हमें सरल होना है. सरल होने का अर्थ है किसी बात को गंभीर न बना देना, किसी भी बात को संघर्ष न बना देना. एक उदाहरण ले लें, कोई आपको दो शब्द गलत बोलकर जाता है, आप मुस्कुरा के आगे चले जाते हैं, कोई समस्या नहीं, खत्म हो गया, आपने भी नहीं ज्यादा सोचा, कोई बात नहीं, इनके हाथों क्या हुआ। दूसरा केस है, दूसरे व्यक्ति को वही व्यक्ति दो शब्द गलत बोलकर जाता है, वो उसको भारी लेता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं, योग नहीं लगता, फिर संघर्ष भर जाता है, कहेंगे यहाँ भी सब ऐसे ही लोग रहते हैं, हम तो यहाँ शांति के लिए आए थे, यहाँ भी सब वैसे ही हैं। सरलता से बातें भी सरलता से पार हो जाती हैं, और जो सरल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बातें उनके पास ठहर जाती हैं। इसलिए अपने परिवारों में सभी को अपने जीवन में दो सुंदर धारणाएं साथ लेकर चलना है। इसके लिए एक है, बातों को, बड़ी बातों को छोटा करना, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ, कुछ भी बात हो जल्दी से जल्दी खत्म करना। सभी माताएं सीख लें घरों में, बड़ी बात को छोटा करना, और दूसरा, बोलो याद रहा मैंने क्या बताया, बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना। जो बढ़ाते हैं वो उलझते हैं, जिनका योग अच्छा नहीं लगता उनका एक प्रमुख कारण होता है, वो बातों में ज्यादा रहते हैं, बातों को ज्यादा बढ़ाते हैं, तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, योग नहीं रहेगा। तो ये लक्ष्य बना लें, बातें तो संसार में बहुत हैं, रामायण बन जाता है बातों से, महाभारत बन जाता है बातों से, हमें क्या बनाना है, गीता बना देनी है। बहुत अच्छा बोला, हमें गीता बना देनी है, जीवन को ही गीता बना देना है। दूसरा सरलता का पहलू है, बहुत हल्के रहना, अपने को हल्का कर देना, हरेक के मन पर, सिर पर जो बहुत बोझ है, कौन सा बोझ है बोलो, बहुत सारे बोझ हैं, देखो मैं गिना देता हूं आपको, आप भी जोड़ना उसमें, किसी के ऊपर है जिम्मेदारियों का बोझ, बहुत काम है, किसी को, माताएं बैठी हैं, पति ने बहुत सताया है उसका बोझ, किसी को बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया है उसका बोझ, हुआ है या नहीं, बहुत माताएं बच्चों से बहुत दुखी हो गई, बेचारी प्यार भी बहुत, मोह भी बहुत, और वो ऐसा काम करते हैं कि उन्हें देखने को इच्छा नहीं होती, पर देखे बिना नींद भी नहीं आती, ये स्थिति हो जाती है, दबाव बना रहता है, समस्याओं का दबाव, किसी पर बीमारियों का दबाव, किसी पर दूसरे के व्यवहार का दबाव, है ना ये सब दबाव, किसी को पूरा जीवन अपमान झेलना पड़ा है, आत्मा ने खुशी खो दी है, जो बाबा ने कहा सदा खुश रहना है, हमें ध्यान देना है, ये जो दबाव मन पे बनाए हुए हैं इनको उतारना पड़ेगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, जो कुछ जीवन में अब तक हो गया है क्या करेंगे, उसे हल्का करना है, फुल स्टॉप लगाना है। सभी अपने को देख लें अच्छी तरह, आज तक मेरे साथ जीवन में जो कुछ भी हुआ है, हैं दोनों बातें हैं, दूसरों ने हमसे कुछ किया है उसे हल्का करना है, हिसाब पूरा हुआ, दूसरा हमने भी तो किया होगा, अपने को जानने की बुद्धि। बहुत लोग शिकायत करते रहते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने मेरे से ये किया, मैंने क्या किया वो पता नहीं, उन्होंने मुझे तंग किया, पर मैं कोई कम थी क्या, मैंने भी तो किया होगा, किया होगा जरूर, इस बोझ को हल्का करना है। बहुत बोझ है, किसी ने व्यर्थ संकल्पों से अपने को बोझिल किया हुआ है, कोई दूसरों को देख देख कर भारी हो रहे हैं, क्या हो गया है संसार को ऐसा देख देख कर परेशान हो रहे हैं। आज भी मैं मधुबन में गया तो एक भाई ने कहा, एक मिलिट्री वाला आया और उसके आंखों में आंसू थे, कहा आज मेरा व्रत है, संसार की अनेक घटनाएं जो आज कल में सुनी हैं आप भगवान को कहो ना, उन्हें सुना है, ये कहते हैं भगवान आता है हमारे पास। वो मिलिट्री वाला कह रहा है आप भगवान को कहो ना, क्या इस दुनिया को जल्दी खत्म करे। देख लो, मैंने आपको यहाँ क्लास में कई बार ये बात बताई है बाबा की, विनाश कब होगा, जब संसार के सभी लोग पुकार उठेंगे हे भगवान ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है इसे खत्म कर दो, तब होगा। दो चार दिन में ये ऐसे समाचार सुन ले, मैं तो सुनता नहीं था, अभी मैं यहाँ हूँ तो रोज सुन लेता हूँ, अखबार भी पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, वंडरफुल समाचार। रेप के केस ही बहुत होने लगे हैं जहां तक छोटी बच्चियों के साथ, दिल दहल जाता है लोगों का, क्या हो गया राक्षसों को, राक्षस भी ऐसे नहीं थे हैं। किसी ने बताया कि रावण की महिमा का वर्णन हो रहा है कई जगह, देखो सीता रावण की जेल में थी लेकिन उसकी आज्ञा के बिना उसने उसको हाथ नहीं लगाया। आजकल लोग हैं ऐसे, एक भी नहीं मिलेगा, तो रावण से बहुत खतरनाक हो गए ना, रावण की महिमा थी बहुत सारी, बताई थी उसकी खूबियां, खूबियां तो थी, उसकी बहुत सारी चीजें अच्छी दिखाई हैं। तो ये समय आ गया है बहुत चीजों को हमें स्वीकार करके साक्षी होना ही पड़ेगा। दुनिया का हाल एक एक साल में बदतर होता जाएगा, ये दिख रहा है कुछ ही दिनों में, जैसे लहर फैल गई है, एक केस नहीं दबता रेप का, दूसरा उजागर हो जाता है, पांच सात दिन में 10-20 केस तो अखबारों में आने लगे, टीवी चैनल्स पर आने लगे। तो ये दयनीय स्थिति जो बाबा कहता है, संसार में काम विकार की आग लगी हुई है। मैं सोच रहा था एक और सरकार शराब की दुकानें खोलती जा रही है, दूसरी ओर गंदी फिल्में बनती जा रही हैं, तीसरी ओर वो चाहते हैं ऐसे क्राइम न हो, होगा? जिन लोगों ने दिल्ली में ये धंधा किया है उन्होंने बताया, गंदी फिल्में देखी फिर शराब पी फिर किया। तो एक ओर हम उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी ओर रोकथाम कर रहे हैं, कैसे होगा? तो हम सभी को, मुझे एक और अच्छी बात याद आ गई है, कल भी मैंने बताई है लेकिन रोज वो जानने की, सोचने की, विचार करने की है। हम सब पूर्वज हैं, है ना? हमारे संकल्प भी संसार की आत्माओं की पालना करते हैं। आप सब जानते होंगे भारत में जब कोई भी कार्य कराने के लिए पंडितों को बुलाते हैं तो पहले मंत्र क्या पढ़ते हैं, सबको सुख मिले, सर्वे भवन्तु सुखिने, मुझे याद नहीं रहता वो पूरा मंत्र जो है, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ, हाँ सुरेश भाई बैठे हैं ना संस्कृत आचार्य, कहाँ से शुरू हुआ ये, ये हम सब की प्रैक्टिकल बात है। हम लोग भी सोचा करते थे क्या ऐसा कहने से सब सुखी हो जाएंगे, कहने वाला ही सुखी नहीं है पंडित जी, सब सुखी कहाँ हो जाएंगे। लेकिन अब ये बात स्पष्ट समझ में आती है, ये बात पूर्वज आत्माओं के लिए है, ये उनके लिए है जो इष्ट देव देवियां हैं, ये उनके लिए हैं जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कि उनके ये संकल्प भी काम करेंगे। इसलिए जो भी यहाँ सब भाई बहने बैठे हैं वो अपने मन में विश्व कल्याण की भावना को बढ़ाएंगे, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सबके विघ्न नष्ट हो जाएं, सब आत्माएं पवित्र बन जाएं, सब इस धरा पर आए हुए बाबा को पहचान लें। सुंदर संकल्प क्रिएट करें सभी, इसको भी अपनी साधना बना लें कि रोज सवेरे एक टाइम फिक्स करके संसार के लिए सुंदर संकल्पों के वाइब्रेशंस फैलाएं। समझ रहे हैं ना माताएं, ये काम शुरू कर दें आप। अपनी समस्याओं और परिवार की चिंताओं को छोड़कर अब ये विश्व कल्याण के संकल्प अपने मन में पैदा करेंगे तो हमारे संकल्प काम करेंगे। मैंने कई छोटी छोटी चीजें देखी, कहीं मैं जाता था, अभी अभी की एक जगह घटना, एक पुल था उस पे बहुत जगह सड़क पे टूटी हुई थी, खड्डे खड्डे थे। मैंने पूछा ये पुल बहुत पुराना है क्या, कि ये बहुत पुराना हो गया, इसकी मरम्मत नहीं करते? कोई नहीं करता, सरकारें कहाँ काम करती हैं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता। ऐसे गड्ढे से थे, उनसे एक्सीडेंट होने का खतरा बना ही रहता, गड्ढा आएगा तो बाइक वाला मोड़ेगा ना, उधर से कोई आ रहा, टक्कर होगी। मैंने सबको सिखाया, हम कार में दो तीन बार आते जाते थे उससे, मैंने सबको सिखाया कि संकल्प करो इस पुल की रिपेयरिंग हो जाए। सरकार बहुत अच्छी है, इस पुल की जल्दी रिपेयरिंग कर देगी। सरकार बहुत खराब है ये नहीं, सरकार बहुत अच्छी है, इस पुल की जल्दी रिपेयरिंग कर देगी। हम तो वहां केवल तीन दिन थे, पहले दिन ये संकल्प किया, दूसरे दिन सब रिपेयरिंग हो गई थी। ये बहुत सुंदर अनुभव था छोटा सा, जो गड्ढे थे सबको भर दिया गया था अच्छे सीमेंट से। उसी रात अगले दिन हम आए तो देखा है तो सब भरे हुए हैं। महसूस हुआ कि हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है, हम सोचते ही गलत हैं, सरकारी काम थोड़ा ही करती है, हम यही सोचते रहते हैं। तो हम थोड़ा अच्छा सोचना शुरू करें कि जो गंदगी के केस हो रहे हैं भारत में, ये सब समाप्त हो जाएं, संकल्प करें। हम ये भी संकल्प कर देते हैं, अच्छा संकल्प सोचते हैं उसे भी, कि कलयुग का अंत आ रहा है, अब तो ये सब बढ़ेंगे ही। तो बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। ध्यान दें अपने संकल्पों, हम नहीं सोचते हम गलत सोच रहे हैं, हम सोचते हैं ये तो एक नेचुरल संकल्प है ना, भाई कलयुग बुराइयों की ओर बढ़ रहा है तो ये सब बुरे धंधे, बुरे केस, मनुष्य में राक्षसीपन, ये सब बढ़ेगा। लेकिन हम सोचें नहीं, अब ये सब समाप्त हो जाए, संसार बिल्कुल पवित्र हो, अब जल्दी ही सुखों के दिन जल्दी लौट आए, ये बीमारियां सदा के लिए समाप्त हो जाएं। तो हम पूर्वज हैं, इस देव देवियां हैं, हमारे ये संकल्प भी बहुत काम करेंगे और इससे जीवन में बहुत महानता आएगी। हमें सहनशील बनना है, जो सहनशील है वो बहुत सुखी है, और जिसके पास सहनशीलता नहीं होती वहां क्रोध, वहां बहुत सारी फीलिंग्स, वहां बहुत सारी निगेटिविटी, संघर्ष बना ही रहता है। इसलिए अपने को सहनशील बनाना है। अपने हाथ में है या नहीं है? हम कब तक सहन करते रहेंगे? सहन करने वालों को तो कष्ट होता है, ईमानदार व्यक्ति को तो पिसना पड़ता है, ये सब तो है, वो हम देख रहे हैं। मेरे पास आज कोई ऑफिसर आया मिलने, उसने बेचारे ने ईमानदारी का परिचय देते हुए चार दूसरे ऑफिसर्स के जो भ्रष्टाचार के केस थे वो उजागर कर दिए। अब इसको फंसा दिया गया, और फंसा इतना दिया गया कि जीवन इसको जीना ही भारी हो गया। तो देखिए, ये तो कलयुग का है, ईमानदार सत्य को पिसना ही होगा। अगर पिसने की ताकत है तो करें, नहीं तो हल्के हो जाएं। पिसना पड़ रहा है, बेचारे का जीवन इतना दुख में था, लेकिन पॉजिटिव बात यह हुई कि उसी दुख के कारण वो बाबा के पास आ गया कि दुनिया में तो कोई सुनता नहीं, तो तलाश हो गई शांति की तो इधर आ गया। बड़ा कष्ट दिया उसे लोगों ने, जबकि उसका डिपार्टमेंट इतना जबरदस्त है और वो भी सीनियर ऑफिसर है, लेकिन बड़े ऑफिसर कुछ कर नहीं सकते। वो बड़े ऑफिसर्स ने किया तो छोटे कुछ कर नहीं सकते, कष्ट हो गया बेचारे को। इसलिए इस संसार में सहज भाव से जीना बहुत आवश्यक है। हम कलयुग को नहीं बदल सकते, क्या बदल सकेंगे? फाइनल इसको बदलने का तरीका शिव बाबा के पास भी क्या है? महाविनाश, संपूर्ण शांति महाविनाश के बाद होगी ही नहीं। सत्य को भी हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए जो ये सोचते हैं हम अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएं, तो उन्हें बहुत चीजों से आंखें बंद करनी ही पड़ेंगी। हम चाहें कि इस संसार में ईमानदारी का राज्य स्थापित हो जाए, ये नहीं हो पाएगा, कष्ट होगा बहुत। और ईमानदार और सत्य व्यक्ति हमेशा क्या होता है उसके साथ, वो अकेला रह जाता है। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि उसे साथ देने वाले सभी पीछे हट जाते हैं, जो तेज तराक लोग हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो हमें सहनशील होना है, लेकिन हमारी सहनशीलता हमारी कमजोरी न बन जाए, ये ध्यान देना है। हमारी शांति भी हमारी कमजोरी न बन जाए। मैं आपको एक उदाहरण दूं, उससे आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लेंगे। कोई एक विदेश की माता आई इसी सीजन में और मेरे पास आई कि मेरी एक समस्या है। क्या समस्या है? मैं जब अपने घर में वहां थी तो मैं अकेली रहती हूँ, बहुत बड़ा घर है। इन देशों में हर व्यक्ति अकेला हो जाता है ना आखिर में, जाते जाते परिवार नहीं रहते साथ। कहा मेरा योग वहां बहुत अच्छा लगता था, यहाँ आई हूँ ज्ञान सरोवर में भीड़ भाड़ योग ही नहीं लगता। ये अनुभव भी कुछ लोगों के रहते हैं। शांतिवन में 30,000 लोग आए हुए, कई विदेशी तो आनंद लेते हैं उसका और कई परेशान। ये भारत वाले देख के भी नहीं चलते, टक्कर मारते चलते हैं, सॉरी भी नहीं कहते हैं, कुछ भी करते हैं। हम तो परेशान हो गए यहाँ अच्छे भीड़ में आके फंसे, हम तो एकांत में आते तो अच्छा होता। ये बहुत कुछ लोगों के साथ ये होता है। तो क्या हमारी शांति इतनी कमजोर हो कि भीड़ को देखकर वो डिस्टर्ब हो जाए? ऐसी शांति शांति नहीं, वो तो कमजोरी हो गई। बाबा तो हमें ये सिखाता है, चारों ओर सागर की लहरें चल रही हों, और विष्णु जी से सैया पर मग्न होकर लेटे हुए हों, ये स्थिति ठीक है। बिल्कुल कोई हमारे पास ना हो, हम शांति चाहते हैं, तो ऐसी शांति बाबा को प्रिय नहीं। हमारी शांति हमारी शक्ति है, हमारी शांति हमारी कमजोरी नहीं है, ठीक है। ऐसी सहनशीलता हमारी कमजोरी ना बन जाए, हमारी शक्ति बन जाए। सहनशीलता के साथ सहन शक्ति, ये चीज हमें शक्तिशाली बनाए। ऐसा नहीं हम सहन करके और परेशान होते रहें सारा दिन। सहन तो कर लिया पर अब योग नहीं लग रहा है, क्योंकि सहन करना पड़ता है, मुख से भी निकलता है, यहाँ तो बहुत सहन करना पड़ता है, हम तो मर गए सहते सहते, तो इसको सहनशीलता कहेंगे? नहीं। जिसको सहन करने का अनुभव हो रहा है वो सहनशील नहीं। सहनशीलता की संपूर्ण स्थिति है कि आत्मा को ये भी पता न चले क्या कि हम सहन करते हैं। यह है सहन शक्ति, यह है श्रेष्ठ स्वमान। संतुष्टता, इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं और आजकल वरदान में स्लोगन में भी ये बात बहुत आ रही है, पर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूं, कल या परसों के वरदान से, जो मास्टर सर्व शक्तिवान है, याद कर लो, इसलिए धीरे बोल रहा हूं। हाँ वही सत परवाने बन जाएंगे, आत्माएं उनके आगे पीछे घूमेंगी। तो बहुत अच्छा अभ्यास सभी करेंगे, कौन सा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और इसका अर्थ है कि परमात्मा शक्तियां मेरे पास हैं, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे से सहन नहीं होता, बहुत समस्या आ गई, हम तो दुखी हो गए, ये नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं, ये गुड फीलिंग हमें होती रहे तो इससे ये परेशानियां ये समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। मैं चार बातें मास्टर सर्वशक्तिवान के बारे में आपको कहूंगा, इन पर आप काम करें, उस पर हम क्लास नहीं कराएंगे अभी। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, पहली बात, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती, उनके आगे समस्याएं ऐसे ही हैं जैसे बाबा का महावाक्य, हाथी के पैर के नीचे चींटी। तीसरी बात सबसे पावरफुल, वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं, बहुत पावरफुल बात है। और चौथी बात, एक समय आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा, बहुत बड़ी चीज है, इस पर हम ध्यान दें। बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाते ही हमें अपनी शक्तियां दे दी हैं, हर समस्या का समाधान है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसको अच्छी तरह फील करें, फील न हो तो बैठकर लिखें, 108 बार लिखो, देखो कितना अच्छा अनुभव होता है इससे। बहुतों ने किया है, मैं बहुतों को सिखाता हूँ और इससे बहुत समस्याएं हल होती हैं। हमें संतुष्ट आत्मा बनना है, संतुष्ट, हमारे अंदर से सच्चे दिल की ये आवाज निकले, बाबा तुम्हें पाकर हमने सब कुछ पा लिया। संसार की इच्छाओं के पीछे मन भटकता न रहे, ये चाहिए ये चाहिए, इससे मुक्त हो जाए, तृप्त आत्मा, ये संस्कार अपना बनाना है। कुछ लोग संसार में भी ऐसे होते हैं जो सब कुछ पाकर भी तृप्त नहीं होते, और कुछ लोग गरीब भी ऐसे हैं जिनके पास बहुत थोड़ा है और तृप्त हैं। खाना जैसा मिला खाकर आनंद पूर्वक सो गए, तृप्त आत्मा। इस पर सभी ध्यान देंगे, संतुष्टता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, दूसरों के व्यवहार से संतुष्ट, हमें कुछ न मिले तो संतुष्ट, हमें अच्छे अवसर न मिले तो संतुष्ट, हम योग्य हैं लेकिन उस तरह की सेवा हमें न मिले तो भी संतुष्ट, कोई हमारी सेवा छीन ले तो भी संतुष्ट, दीदियां कैसा भी व्यवहार करें तो भी संतुष्ट। समझ गए ना इशारे मेरी बात, कहीं कहीं गड़बड़ होती है, संतुष्ट। साथी कैसा भी व्यवहार कर दें संतुष्ट, इसके लिए क्या चाहिए? संपूर्ण ज्ञान। बहुत सारी समस्या इस फील्ड में खड़ी होती है कि हर मनुष्य को सूक्ष्म रूप से मान की इच्छा होती है, और वो मान की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो असंतोष उभरता है। मुझे याद रहता है जब हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, पहली हुई 83 में ओम शांति भवन बना, दूसरे साल हुई, फिर हर साल होने लगी, 84-85 अच्छी अच्छी होने लगी, बड़े बड़े लोग आए, सन्यासी आए, शंकराचार्य आए, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, असिस्टेंट, वो आए, नाम होता गया, अखबारों में धूम मचने लगी, जयपुर आदि में बहुत अच्छी धूम मची, जो लोग विरोधी थे वो उन पर भी प्रभाव पड़ने लगा। तो क्या हुआ हम सबके बीच में? देखो ये एक उल्टी चीज सुनाऊं मैं आपको, उल्टा हुआ। जो सेवा कर रहे थे, जो बहुत जी जान से लगे हुए थे, तब कॉन्फ्रेंस होना माना बहुत बड़ी बात थी। अब कॉन्फ्रेंस होना कॉमन बात है, हमें कुछ भी तैयारी करनी नहीं पड़ती। तब तो लोग रात रात भर जागते थे, गुजरात की पूरी टीम आती थी एकोमोडेशन के लिए। तो यहां वालों को, सेवादारियों को क्या संकल्प हुआ? सेवा सारी हम करें, और नाम उनका जो 10 मिनट भाषण कर गए, फोटो उनके आ रहे हैं। असंतोष शुरू हो गया। आखिर भगवान को मुरली चलानी पड़ी, तब शांति हुई। मुरली चली, बर्तन मांजने वालों का भी बड़ा महत्व है, सफाई करने वालों का भी बड़ा महत्व है। अगर सफाई न होती, गंदगी होती, तो आने वाले महिमा करते? बाबा ने चढ़ा दिया सबको मुरली चला के। आपने सुनी भी हो, मुरली रिवाइज होके आई थी। तो सूक्ष्म में संतोष कहीं ना कहीं उभरता है मनुष्य के मन में, उससे हमें अपने को बाहर निकालना है। जो कुछ हो रहा है उसे साक्षी होके भी देखना है, सहज भाव से भी देखना है, और अपने अंदर ये एक लक्ष्य हो कि असंतुष्ट होकर हम अपनी खुशी को, सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट क्यों करें? क्या हमारे ना खुश होने से वो सब चीजें बदल जाएंगी? तो क्यों ना हम खुश रहें? इसलिए सदा खुश रहना और संतुष्ट रहना ये बहुत ही समझदारी की बात है। विवेकशीलता चाहिए इसमें, बहुत बहुत ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ता है, नहीं तो मनुष्य खुश नहीं रहता। जब बाबा हाथ उठवाता है शांतिवन में, तो 25,000 हाथ उठा देते हैं, हम सदा खुश रहते हैं, उठा देते हैं ना। लेकिन सब जानते हैं खुश रहना इतना आसान काम नहीं है। बाहर निकलते ही जब खाने पे भीड़ लगी रहती है और किसी का पानी ऊपर गिर गया तो खुशी खत्म। देखा, मैनर्स नहीं है, देख के नहीं चलते, पानी गिरा दिया। मेरे पास तो आखिरी ड्रेस बची थी, कल जाना था, ये भी गंदी कर दी। परिस्थिति आ जाती है ना उनको। तो संतुष्ट रहना अपने हाथ में है या नहीं? अपने हाथ में। जिसने अपनी संतुष्टता की बागडोर दूसरों को दे दी, वो कभी संतुष्ट और खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जिसको सदा खुश रहना है और संतुष्ट रहना है, वो सदा एक बहुत सूक्ष्म बात पर पुरुषार्थ करें। जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उन्हें निष्काम होना होगा। निष्काम, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा किया दरिया में डालो, हिंदी में कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो नेकी क्या करेगी? दरिया में डाल के खत्म नहीं हो जाएगी। जब इस जीवन की, जब जीवन की नैया इस दरिया में डगमगाने लगेगी ना, तो नेकी हमारी नैया को सुरक्षित बाहर पहुंचाएगी। और जो लोग अपनी सेवाओं का वर्णन करते हैं, उसके रिटर्न में कुछ मांग करते हैं, वहां दिव्यता नहीं रहती, वहां वातावरण में आनंद नहीं रहता, वहां बड़े लोग भी उन्हें संतुष्ट खुश करने में बहुत ध्यान देते हैं, फिर भी कई लोग नहीं होते। इसलिए हमें आदत बनानी है निष्काम भाव। आपने रसिया का सुना ही होगा, कहां सुनाया था संतोष बहन ने, मैं सुना देता हूं आपको, यहां सुनाया या नीचे सुनाया, कि उनके बाहर, सेंटर के बाहर एक टेबल रखते हैं वो, और जिसको जो देना है वहां रख के चला जाता है चुपचाप। कहा सोना भी रख जाते हैं लोग वहां, किसी को पता नहीं होता किसने क्या दिया, पैसे लिफाफों में बंद करके वहीं छोड़ जाते हैं। अच्छी अच्छी चीजें जो देनी है वहीं रख जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। मैंने कहा ये रसिया वाले तो भारत से भी आगे निकल गए, कितनी सुंदर कल्चर है ये। वहां भी भारतीय कल्चर है। बहने शुरू में सुनाती थी कि जब वो यहां से सेवा करने गई ना, वो कम्युनिज्म का शासन खत्म हुआ था, तो वहां की रसम थी कि जो भी सेंटर में आएगा कुछ लेके आता था। तो क्या लाते थे वहां के लोग? मछलियां, थैलियों में भर भर मछलियां। भाई बहनों के पास जा रहे हैं, भारत से बहने आई हैं, तो क्या खाएंगी? जब उन्हें पता चला तब उन्हें बड़ी लज्जा आई, फिर अच्छी अच्छी चीजें लाने लगे। ऐसे ही है निरहंकारिता। ज्ञान और योग सीख कर जो व्यक्ति निरहंकारी नहीं बना, उसको ज्ञानी कहा ही नहीं जाएगा। जिसने कुछ भी प्राप्तियों के बाद मैंपन को बढ़ा दिया, ये भूल गए कि सब कुछ बाबा की देन है, उसको भी ज्ञानी नहीं कहेंगे। इसलिए अपने मन के अहंकार को तेजी से रियलाइज करके हल्का करते चले। मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, समर्पण भाव सब कुछ तेरा, ऐसा जीवन ही रूहानियत से भरा हुआ जीवन कहलाता है। इस पर तो कई अच्छी क्लास हो सकती हैं। मैं मेरा, हमने अपने मधुबन की क्लास में 3-4 दिन पहले दो चीजों पे चर्चा कराई। आपको वो संकल्प दे देता हूँ, जो अच्छा चिंतन करते हैं वो चिंतन करके उस पर लिखेंगे। आने वाले समय में दृष्टि से और वाइब्रेशन से ही सेवा होगी। तो दृष्टि से क्या क्या होता है और वाइब्रेशन से क्या क्या होता है, ग्रुप में सबने पॉइंट्स निकाले, हर एक के कम से कम 15-15 पॉइंट निकल गए थे। तो हमें भी अपने को तैयार करना है कि हमारी दृष्टि से सेवा हो, जो बाबा कहता रहता है ना। आज जैसे कहा मस्तक बोर्ड पे क्या लिख दो, संतुष्ट रहना है और करना है। ऐसे ही हमारे मस्तक की स्क्रीन पर हमारी दृष्टि देते ही भाग्य दिखाई देने लगेगा। दोनों नैन क्या बन जाएंगे? अभी मुरली में था, दोनों नैन पावरफुल लाइट के बल्ब। तो ये वंडरफुल अनुभव होने जा रहे हैं। इसलिए सभी अपनी दृष्टि में रूहानियत भरे, संकल्पों में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भरे, तो ये सेवा आने वाले समय में बहुत जबरदस्त चलेगी। ओम शांति।